नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। कहा, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार। ईसीआई नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से मांगे सुझाव। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा, 3 नए आपराधिक कानूनों से तेज होगी जांच, बढ़ेगी दोषी दर। विदेश मंत्रालय की सलाह, वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्राओं से बचे भारतीय नागरिक। 3 वर्ष से कम अवधि वाले स्टार्टअप उठा सकेंगे अनुसंधान विकास और नवाचार कोष का लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल है। उन्होंने कहा कि देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों के अनुकूल है और इसलिए विगत वर्षों में खेलों में हम सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनके उचित प्रशिक्षण, पोषक आहार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरतापूर्वक करता है तभी सफलता मिलती है और देश इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल और विकास के बीच की समानता के बारे में कहा कि वॉलीबॉल टीम भावना जगाता है और इस खेल की प्रकृति देश की विकास गथा जैसी है, जिसके लिए हर किसी से सहयोग की अपेक्षा होती है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल के आयोजन से वाराणसी राष्ट्रीय खेल मानचित्र में शामिल हो गया है। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर जवाब 10 जनवरी तक दिए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए यह डिजिटल मंच बनाया है। आयोग के अनुसार ऐप का परीक्षण संस्करण बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत, रोजाना की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर सूचकांक कार्डों का प्रकाशन करता है। इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और इसके बाद हुए उपचुनावों के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोगों से प्राप्त सुझावों की जांच की जाएगी और उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म को इस महीने के अंत में आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को पर्याय दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मनरेगा की नहीं बल्कि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार की रक्षा करना चाह रही है। श्री चौहान ने कहा कि विशाल बजट के बावजूद मनरेगा ने किसी स्थायी संपत्ति सृजन या गांवों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून श्रमिकों के हित में है, और क्योंकि इसमें बढ़े हुए भुगतान, बेरोजगारी भत्ते, विलंबित भुगतान पर ब्याज और 100 की तुलना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे गांवों में सार्थक योगदान भी दे सके। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव जरूरी है और सतत परिणाम के लिए ग्रामीण रोजगार के बजट में काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र सरकार देगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा है। श्री चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों में 184 नई किस्मों के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में बीजों की 3,200 से अधिक किस्में विकसित की गई है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ 3 वर्ष के भीतर देश भर के किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर कार्य कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नई आपराधिक कानून वर्ष 2029 तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों से जांच में तेजी आ रही है और दोष सिद्धि दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से संसदीय परामर्श समिति की 12 बैठक की है जिनके परिणाम सकारात्मक मिले हैं। श्री शाह ने कहा कि 2021 में देश में एक भी मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं थी जबकि आज इनकी संख्या 1,000 तक पहुंच गई है। देश में फोरेंसिक लैब का नेटवर्क अगले 5 वर्ष में स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वर्ष 2029 तक देश के प्रत्येक राज्यों में एक फोरेंसिक विश्वविद्यालय या केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला होगी। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स को देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालने का आदेश दिया है। यह निर्णय निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किया गया जिन्हें कल सुबह अमेरिका सेना ने हिरासत में ले लिया। न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड्रिक्स वेनेजुएला गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगी। फैसले में यह भी कहा गया है कि न्यायालय इस मामले पर विचार करेगा ताकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्य की निरंतरता और संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनी ढांचे का निर्धारण किया जा सके। भारत ने वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है। भारत ने कहा कि सभी पक्षों को तमाम मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इस बीच वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और इन्हें हर संभव सहायता दे रही है। अब 3 वर्ष से कम अवधि वाले स्टार्टअप भी अनुसंधान विकास और नवाचार कोष का लाभ उठा सकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSI और RK के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विभाग के 41वें स्थापना दिवस समारोह में नई दिल्ली में कहा कि अब नए स्टार्टअप भी पंजीकरण कर इस कोष का लाभ उठा सकते हैं। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण जैसे फैसले लिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भरता भारत की दृष्टि का कार्यरूप दे रहा है और एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जिस पर भरोसा करने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने देश के अनुसंधान और विकास तथा नवाचार परितंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। इनमें आंतरिक अनुसंधान और विकास को महत्व देने, डीप टेक स्टार्टअप, केंद्र संबंधी दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन, प्रिज्म नेटवर्क प्लेटफॉर्म, इनोवेटर प्लस और प्रिज्म स्कीम के अंतर्गत क्रिएटिव इंडिया की शुरुआत शामिल है। बांग्लादेश हिंद बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेताओं ने कल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से कल राजधानी ढाका में मुलाकात कर पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। बैठक में अल्पसंख्यक नेता ने खालिदा जिया को एक मजबूत और किसी भी तरह का समझौता न करने वाली नेता बताया जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेताओं ने कहा कि सुश्री खालिदा का निधन बांग्लादेश की एक बड़ी क्षति है। अल्पसंख्यक नेताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल में बढ़ती हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और 8 सूत्री मांगे रखी। नेताओं ने अनुरोध किया कि BNP इन 8 सूत्री मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करे। श्री तारिक रहमान ने अल्पसंख्यक नेताओं से कहा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूर्ण निर्माण के लिए कानून व्यवस्था की बहाली आवश्यक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।